कुंदकुंदाचार्य भगवान का समय सार है और इस समय सार के पुण्य पाप अधिकार के हम 150 नंबर के गाथा के बाद जो 103 नंबर का जो कलश है उसको देख रहे हैं। यहाँ तो ये बात चल रही है, ये दोनों पुण्य और पाप के जो भाव है वह समान है। क्यों? कि दोनों से ही बंधन होता है और वह निषेध्य है, निषेध करने योग्य है। इसी बात की पुष्टि कराने के लिए उन्होंने ये कलश लिखा है। यह कलश हम पढ़ते पढ़ते हैं। ये प्रवचन रत्नाकर भाग छठा है, उसके पृष्ठ क्रमांक 70 पर आए, 70 गुजराती में 70। आखिरी दो लाइन है, देखो ये स्वामी जी का कथन है, वो समझा रहे हैं। अरे शिवपुरी नो राजा शिव भू भगवान आत्मा राग मां रोकाई गयो छे। आहा, दर्शन ज्ञान, दर्शन आनंद शांति इत्यादि अनंत गुण नो भंडार गुणनिधि प्रभु पोताने निधि ने भूली ने राग मां रति करे छे। देखो क्या कहना चाहते हैं। ये जैसा मैंने एक दफे आपको बताया था कि हम तो चक्रवर्ती है, प्रत्येक आत्मा चक्रवर्ती है और उसको हाथ में झाड़ू दे के गांव साफ करने को बोलने जैसा ये अपने स्वभाव में तो उसको लीन होना था। ऐसा ये चैतन्य भूप चैतन्य चक्रवर्ती वो राग में रचा पचा रहता है तो ऐसा खोटा कार्य में लगा है। तो यहाँ स्वामी जी वही बात कर रहे हैं, पोता ने निधि ने भूली ने राग मां रति करे छे। स्वयं तो ज्ञान दर्शन स्वभावी है और अनंत गुण का भंडार है उसमें, ऐसे जो निधि है उसको वो भूल जाता है और राग में राग करता है। ते राग ने पोतानो माने छे, धर्मरूप माने छे, परंतु भाई राग शुभ हो क्या शुभ बनने पर छे, पुद्गल स्वभाव छे, चैतन्य स्वभाव नथी। अने परने पोतानु माने ए तो चोर छे। बनारसी दासे कहू छे ने, क्या कहे छे, सत्ता की समाधि मई बिराजी रहे सोई साहू, सत्ता तय निकसी और गहे सोई चोर है। क्या कहना चाहते हैं? ये साहू यानी साहूकार, साहूकार जिसको हम कहते हैं यानी जो बिल्कुल नेक आदमी रहता है वो पैसे का लेन देन करता है उसको साहूकार कहते हैं। ये आजकल की बात नहीं हो, बनारसी दास जी की बात। तो क्या कहते हैं, ये किसको साहूकार कहा है? पैसे की लेन देन वाले को नहीं, ये साहूकार शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया। तो कहते कि सत्ता जो है यानी अपनी स्वयं की जो सत्ता है उसी में जो एकाग्र है, लीन है, रममाण है उसी को यहाँ समाधि कहा है। तो सत्ता की समाधि में विराज ही रहे, यानी जो अपने ही घर में रहकर अपने ही सत्ता में रहा हुआ है, अपने ही स्वरूप में रहा हुआ है, वह तो साहूकार है, यानी साधु आदमी है, यानी अच्छा आदमी, भला आदमी है। और सत्ता तई निकसी, और अपने स्वरूप से निकलकर छुटकर और गहे और यानी अन्य जगह जाए, देखे, सोई चोर है, उसको तो देखना तो अपने स्वस्वरूप को था, वो अन्य तरफ देखने लगा, तो ये तो उसको चोर कहते हैं। राग ने पर ने पोतानो मानवा रूप चोरी ना अपराधनी सजा, चार गति नो जेलवास छे भाई। आवो मार्ग त्रण लोकना नाथ सर्वज्ञ देवे फरमायवो छे, अने एज मार्ग दिगंबराचार्य ने मुनिवरे अहीं प्रसिद्ध कर्यो छे। आचार्य ने मुनिवरो तो छठा सातमा गुणस्थाने दिवस में हजारों वार आव जा करे छे। तेओ ने पांचली रात्रे निद्रा पण अत्यंत अल्प होय छे। पांचली रात्रे याने तीसरे प्रहर में, यानी अर्ली इन द मॉर्निंग, अपनी भाषा कौन सी होती है, समझ लीजिए 4-5 बजे के आसपास की जो पांचली रात जो होती होगी, 3 के बाद की। निद्रा पण अत्यंत अल्प होय छे, आवी भावलिंग मुनि दशा छे, तेमने चारित्र दशामा हमने पढ़ा था, स्वामी जी ने बताया था, पौनी सेकंड भी सोते नहीं करके, इसके पहले भाग में आया था, कैसी अवस्था होगी। तेओ ने पांचली रात्रे निद्रा पण अत्यंत अल्प होय छे, आवी भावलिंग मुनि दशा छे, तेमने चारित्र दशा में अतीन्द्रिय आनंद नी छाप वाळू प्रचुर स्वसंवेदन होय छे। आवी दशा ने भगवाने मोक्ष मार्ग कह्यो छे, परंतु पंच महाव्रतना के व्यवहार रत्न त्रयना राग ने मोक्ष मार्ग कह्यो नथी। गंभीर बात छे भाई, कथनचित ज्ञान थी एटले शुद्ध रत्नत्रय थी, अने कथनचित शुभ राग थी एटले व्यवहार रत्नत्रय थी मोक्ष मार्ग थाय एम भगवाने कह्यू नथी। ज्ञान जे एक मोक्षनो हेतु कह्यो छे, ज्ञान एटले अहीं त्रिकाळी ज्ञाननी द्रव्य स्वभावनी वात नथी, पण ए त्रिकाळी द्रव्य स्वभावमां एकाग्रता करता प्रकट थती शुद्ध रत्नत्रय रूप चैतन्यनी परिणती ने अहीं अहीं मोक्षनुं साधन कह्युं छे। ज्ञानम एवनो आ अर्थ छे। अब ये ज्ञानम एव ये कल हमने देखा था, आपने पढ़ा श्लोक में, हाँ ये पेज नंबर 69 पर लिखा है, देखो, ज्ञानम एव विहितम शिव हेतु, यानी ज्ञान ही शिव यानी मोक्ष का हेतु है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है ना, इधर भी है ना 70 पेज में, हाँ बरोबर। प्रश्न, जो आम छे तो पछी आ बदी धमाल, 25-26 लाख ना मंदिरो, भगवान नी प्रतिष्ठा, रथयात्रा, गजरथ अने स्वाध्याय प्रवचनों वगैरह नी शी जरूर छे, क्योंकि ये सब वहां तो होता ही है, हुआ था रादर। ए सर्व बाह्य वस्तु तो पोत पोताना काले पोत पोताना कारणे होय छे। ये कौन सा नहीं लगेगा इसमें, हाँ प्रतिभा बताई, हाँ कारण है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्या कहा, देखो हम जब ये अभ्यास करते हैं ना तो हमको याद होनी चाहिए हमने क्या पढ़ा था, यहाँ अप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इस तरह से। ए सर्व बाह्य वस्तु तो पोत पोताना काले पोत पोताना कारणे होय छे, मंदिर प्रतिष्ठा इत्यादि शू जीव करे छे, ना જીવને તો તે કાળે તેવો શુભરાગ હોય તો પુણ્યબંધ થાય, ધર્મ નહીં. એ શુભરાગ કઈ મોક્ષનું સાધન નથી. સાધકને પણ વચ્ચે આવો શુભભાવ આવે ખરો, સાધકને અને ધર્મિકો, સમ્યક દ્રષ્ટિકો, ભક્તિ પૂજા પ્રતિષ્ઠા ઇત્યાદિ કરવાનો જ્ઞાનીને પણ શુભભાવ આવે છે, પણ એ બંધનું જ કારણ છે, એ કાંઈ ધર્મનું સાધન નથી. ઉપચારથી એને ધર્મ સાધન કહે છે એ જુદી વાત છે, છે નહીં, એને એ અસલ વાત નહીં હૈ. શુભાશુભ ભાવ છે એ તો રાગ છે, રોગ છે, આકુળતા છે. બંધનું કારણ છે અને જ્ઞાન જ એક મોક્ષનું કારણ છે. નિર્મળાનંદનો નાથ, શુદ્ધ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ પ્રભુ ભગવાન આત્મા ત્રિકાળ છે, એમાં એકાગ્ર થતા શુદ્ધ ચૈતન્યની જે નિર્મળ પરિણતિ થાય તે જ્ઞાન જ મોક્ષનું કારણ છે એમ કહ્યું છે. વિહિતમ એમ શબ્દ પડ્યો છે ને, એમ કે આ જ વિધિ છે અને આ જ માર્ગ કહ્યો છે. આહા હા, આચાર્યના શબ્દને એટલે કથનને યથાર્થ સમજે તો ન્યાલ થઈ જાય એવી વાત છે. મોટા લાંબા લાંબા પુસ્તકો શાસ્ત્રોની વાત કરે પણ પરમાર્થ પ્રકટ ન કરે તો તેથી શું? એ ક્યાં કહેના ચાહતે હૈ? મોટા લાંબા લાંબા પુસ્તકો એટલે શાસ્ત્રોની વાતો કરે પણ પરમાર્થ પ્રકટ ન કરે, યાને ક્યાં? હા, આત્માનુભૂતિ જો પ્રાપ્ત નહીં કરે તો તેથી શું? જેનાથી જન્મ મરણ ન મટે એ ચીજ ગમે તેટલી બહારથી ઊંચી જણાય તો પણ તેની કાંઈ કિંમત નથી. છડાળામાં આવે છે ને કે મુનિવ્રત ધાર અનંત બાર ગ્રીવક ઉપજાયો, ભાઈ નૈવી ગ્રીવક જાય એવા શુક્લ લેશાના શુભભાવ એ પણ ક્લેશ જ છે. ભગવાને એને બંધનું જ કારણ કહ્યું છે. વિચાર તો ખરો કે મોક્ષ માટે શું અનંતવાર મુનિવ્રત ધારણ કરવા પડતા છે? અંદર ભગવાન આત્મા શિવપુરીનો રાજા ચૈતન્ય દેવ પ્રભુ રાજતે એટલે અનંત ગુણની સમૃદ્ધિ વડે શોભી રહ્યો છે. જે પોતાના ચૈતન્ય સ્વરૂપમાં એકાગ્ર થઈને રાજતે એટલે શોભે છે તે રાજા છે, ભૂપ છે. પોતાના જ્ઞાન અને આનંદ સ્વરૂપમાં એકાગ્ર થવું એ જ્ઞાન ચેતના છે, અર્થાત જે શક્તિરૂપે જ્ઞાન ત્રિકાળ છે તેને પર્યાયમાં પ્રકટ કરવું એનું નામ જ્ઞાન ચેતના છે, અને એને જ ભગવાને મોક્ષનું સાધન કહ્યું છે. એ જ્ઞાન ચેતના, કર્મ ચેતના ઓર કર્મફલ ચેતના કી બાત એક દો દિન મેં આઈ થી. હવે આપણે કળશ 104 જોઈએ.
63 પૃષ્ઠ,
હા 63 પૃષ્ઠ પર આના
દેખો, એ ઉપર જો લિખા ને હેડિંગ મેં સમયસાર ગાથા 148-149 લિખા, તો 150 કરો ઉધર પૃષ્ઠ કે ઉપર જો લિખા હૈ. અભી યહાં જો ઇસ કલશ કા જો હેડિંગ હૈ વો નીચે શ્લોકાર્થ કે ઉપર લિખા હૈ, ઇસ કલશ મેં ક્યા આને વાલા હૈ વો બતા રહે. જો સમસ્ત કર્મ નિષેધવામાં આવ્યું છે, કૌન સે સમસ્ત કર્મ, કિસકી વાત હો રહી હૈ? હા નરીનભાઈ, હા શુભાશુભ, સમસ્ત કર્મો કો નિષેધ કરેંગે તો પછી મુનિઓને શરણ કોનું રહ્યું? વહ વાત અભી ઇસ કલશ મેં બતા રહે. અભી હમ કલશ પઢેંગે. નિષિદ્ધે સર્વસ્મિન સુકૃત દુરિતે કર્મણિ કિલ પ્રવૃત્તે નૈષ્કર્મે ન ખલુ મુનય સંત્ય શરણા તદા જ્ઞાને જ્ઞાનમ પ્રતિચરિતમે શામ હિ શરણમ સ્વયં વિંદંતે તે પરમમૃતમ તત્ર નિરતા. इसका अर्थ नीचे लिखा है, देखो श्लोकार्थ में हम भरते हैं, सुकृत दुरीते सर्वस्मिन कर्माणि किल निषिद्धे। सुकृत और दुकृत है, दुरित, दुरित ने पाप और सुकृत ने पुण्य। दुरितान से तिमिर जाओ, मराठी लोगों को पता है
पाप।
देखो क्या कहते हैं, शुभ आचरण रूप कर्म अने अशुभ आचरण रूप कर्म, यानी यहाँ शुभाशुभ भावों की बात चल रही है, क्रिया की बात नहीं है। लिखा तो आचरण रूप कर्म है, परंतु शुभ भाव और अशुभ भाव की बात हो रही है।
कर्म का अर्थ यहाँ क्रिया किया है,
क्रिया की बात।
हाँ, भाव भाव के साथ हुई जो क्रिया है उसकी बात है।
अच्छा,
शुभ आचरण रूप लिखा ना भाई,
आचरण रूप,
शुभ आचरण रूप क्रिया, यानी शुभ भाव के सही जो क्रिया हो रही है वो
शुभ भाव,
अने अशुभ आचरण रूप कर्म एवा, पढ़ो।
हाँ, एवा समस्त कर्म नो निषेध करवामा आवता अने नैष्कर्मे प्रवृत्ते है, ए रीते निष्कर्म अवस्था प्रवर्तता मुनयः खलु अशरणाः न सन्ति, मुनियों कहीं अशरण नथी। तदा कारण के जारे निष्कर्म अवस्था यानी निवृत्ति अवस्था प्रवर्ते छे, त्यारे निष्कर्म ने अन्य कोई आचरण रूप क्रिया नहीं है, उस अवस्था में ज्ञाने प्रतिचरितम ज्ञानम ही, ज्ञान में आचरण करतू रमण करतू परिणम तू ज्ञानज एशाम, यानी ते मुनियों ने शरणम शरण छे। क्या कहते हैं कि शुभ आचरण रूप कर्म और अशुभ आचरण रूप कर्म ऐसे सभी कर्मों का निषेध करने में आता है और निष्कर्म अवस्था प्रवर्तती है, तो मुनियों को कोई शरण नहीं है ऐसा मत समझना। तो उनको कौन सा शरण है, तो ज्ञान में ही परिणमने वाला ज्ञान ही मुनियों को शरण है। एते इटले तेओ तत्र निरताः, ते ज्ञानमा लीन थया थका परमम अमृतम परम अमृत ने स्वयं पोते विंदन्ति अनुभवे छे आस्वादे छे।
देखो
ये तो मुनियों की बात बताई है, परंतु यहाँ तो हमें ये उपदेश है कि हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, अपने आत्मा का अनुभव करना है, तो क्या करें, तो समस्त शुभ अशुभ आचरण का लक्ष्य छोड़कर उसका निषेध करके निष्कर्म अवस्था रूप प्रवर्तन है, क्या करना, ज्ञान को ज्ञान में लीन कर देना, अपने आप का अनुभव करना।
आप कुछ बोले? हाँ जी, देखो यहाँ पर मूल ये गाथा लिखने का प्रयोजन क्या रहा कि उन्होंने तो शुभ और अशुभ दोनों ही भावों का यहाँ निषेध किया, दोनों ही बंध के कारण कहे, तब वह जो दयालु शिष्य था उसको तो ऐसा लगा कि आप दोनों का निषेध कर रहे हैं, सुकृत यानी शुभ कर्म जो है यानी शुभ क्रियाएं हैं या अशुभ ऐसे दोनों दुरित, इन दोनों का आप निषेध करते हैं, तो ये हमारे मुनिराज फिर किसका शरण जाएंगे, वो आखा दिन 24 घंटा क्या करेंगे, उनको कोई काम तो होना चाहिए ना, तो वो तो अशरण हो जाएंगे। देखो क्या कहते हैं, जो समस्त कर्म क्रियाएं निषेधवामा आवे आयु छे, तो पछी मुनियों ने शरण कोनु रहूं, अभी उनके कोई शरण ही नहीं, अभी वो करें क्या, आपने तो दोनों को निकाल बाहर कर दिया। तो फिर यहाँ उसके उत्तर में ये कलश जो लिखा है तो कहते हैं कि भले उनको हमने, आप समझते हो कि उनका हमने निषेध किया है, तो आप ऐसा मत समझना कि मुनि अशरण हो चुके हैं, उनके शरण है तो कौन, तो कहते हैं कि अपना स्व का आत्मा ही उनके लिए शरणभूत है। और फिर उन्होंने बताया ना, ज्ञान मा आचरण करतु रमण करतु परिणमन करतु कौन, ज्ञानज ते मुनियों ने शरण छे, और मुनि योग की जैसी ऐसी अवस्था किसी जीव के प्राप्त होती है तो शुभ और अशुभ भावों में न अटकते हुए जितना हो सके अपने स्वरूप में एकाग्र होके ऊपर की अवस्थाओं को प्राप्त करें। इसलिए कह रहे हैं कि ते ज्ञानमा लीन थया थका परम अमृत ने पोते अनुभवे छे, यानी अपने स्वरूप का जो प्रचुर आनंद है उसको तो वो बहुत उसका प्राशन करते हैं। तो अभी भावार्थ हम पढ़ेंगे। सुकृत के दुष्कृत बनने नो निषेध करवामा आयो छे, तो पछी मुनियों ने कहीं पन करवानो नहीं रेवा थी ते वो मुनिपनु शाना आश्रय।
देखो मैं पढ़ती हूँ।
हाँ एक मिनट। शाह आलंबन वड़े पाड़ी शके एम कोई ने शंका थाय तो तेनु समाधान आचार्य देवे करियो छे।
देखो आचार्य देव क्या कहते, सर्व कर्म नो त्याग थे ज्ञान नु महाशरण छे। शुभ भाव अशुभ भाव सभी कर्मों का त्याग होने पर उनको शरणभूत क्या है, तो ज्ञान ही उनको शरण है। ते ज्ञान मा लीन थता सर्व आकुलता रहित परमानंद नो भोगोटो होय छे। जो शुभ और अशुभ दोनों में तो राग था तो आकुलता थी, अब उसके बिना ज्ञान में लीन हो जाएंगे तो परम अनाकुलता हो जाएगी उनके। आकुलता रहित परमानंद नो भोगोटो होय छे जेनो स्वाद ज्ञानी जाने छे। अज्ञानी कषाई जीव कर्मने ज सर्वस्व जाणी तेमा लीन थई रह्यो छे ज्ञानानंद नो स्वाद नथी जानतो। वो शुभ अशुभ शुभ अशुभ में ही लीन रहता है और ज्ञान और आनंद का स्वाद जो ज्ञान में एकाग्र होने पर मिलेगा उसकी तो उसके पहचान भी नहीं है। अब यहाँ हम 72 पृष्ठ पर आते हैं, कलश 104 का जो मथालू है उसका अर्थ करेंगे। जो समस्त कर्म निषेधवामा आयु छे तो पछी मुनियों ने शरण कोनु रह्यूं। भगवान शुभाशुभ भाव बंधनु कारण छे, शुभ भाव पण बंधनु कारण छे। एक बार शुभाशुभ बता दिया फिर भी दोबारा शुभ भाव क्यों कहा, क्योंकि लोगों की ऐसी मान्यता है ना, पाप से तो चलो बुरा है परंतु पुण्य तो करना चाहिए, तो कहते वह भी बंध ही का कारण है धर्म नथी। एम कहीने आपे तेनो निषेध कर्यो तो हवे मुनियोए पाळवू शुं? न अशुभ भाव की तो कोई बात ही नहीं है, परंतु मुनियों के लिए आपने शुभ भाव का भी, मुनियों के लिए क्या सबके लिए, शुभ भाव का भी निषेध किया है तो भी मुनियों को क्या करना चाहिए। 5 महाव्रत 5 समिति 3 गुप्ति इत्यादि व्यवहार नो आपे बंधना कारण कहीने निषेध कर्यो। ये जो मुनि योग्य जो 28 मूल गुण पालन करने का जो शुभ भाव है उसका तो निषेध किया, तो पछी मुनियों ए पाळवू शुं? आलंबन एटले आश्रय कोनो करवो? मुनियों जेनो आश्रय करे छे तेनो तो आपे निषेध कर्यो। ये शिष्य ऐसे ही मान रहा है कि मुनियों को आलंबन तो 28 मूल गुणों का, उसको उस जो क्रिया है शरीर की उसका है, तो उनको तो ना शरीर की क्रिया का अवलंबन है ना ही राग का अवलंबन है, उनके तो अपने स्वभाव का अवलंबन है। तो मुनियोरो शरण शू रही हूँ? शिष्य ना आ प्रश्न प्रति समाधान करतो आचार्य देव कलश कहे छे, जो अभी हमने कलश और उसका श्लोकार्थ पढ़ा था।
देखो अभी यहाँ पर एक बात, एक मिनट देखो यहाँ आप बोले बाद में। यहाँ पर एक बात बताई है, 5 महाव्रत 5 समिति और 3 गुप्ति, ये 13 प्रकार जो है वह मुनि के चारित्र के बताते हैं। 13 प्रकार के चारित्र जब पूछे जाएंगे या उसका रेफरेंस आएगा तो ये बात हमें याद रहनी चाहिए। कौन से 13 बताए हैं? त्रण गुप्ति। 3 गुप्ति कौन सी होती है जानती हैं? मनोगुप्ति, बहुत अच्छा, मनोवचन का है इसमें गुप्ती कहना, ये हो गए। और पांच महाव्रत कौन से हैं रश्मि बहन, आप जानती हैं? नहीं जानती? हाँ थोड़ा थोड़ा बोलो, जास्ती मत बोलो। हाँ कोई बात नहीं, मैं आपको नर्वस करने के लिए नहीं पूछ रहा हूं। हाँ हाँ महाव्रत के नाम लेने आपको, हिंसा व्रत होगा, अहिंसा, अच्छा हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ हमारी प्रतिभा तो ही बोलेगी। हाँ देखो अभी कैसा बोलती है ध्यान रखना, अहिंसा महाव्रत, महाव्रत पूछे ना तो महाव्रत लगाना है आपको। हाँ अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, नहीं अरे 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 रुक जाओ बाद में घर में जाने के बाद बोल। हाँ कुछ रह गया बेन? हाँ 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 बोलो बेन। ब्रह्मचर्य खाली इतना ही है क्या? ब्रह्मचर्य और कौन सा रह गया? नहीं 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 हाँ बोलो। अपरिग्रह महाव्रत, देखो इसमें क्या गड़बड़ी होती है हमेशा, मैं वो भी आपको बता ही देता हूँ ताकि अगले टाइम होगी नहीं। देखो हम कहते अचौर्य महाव्रत और ये अपरिग्रह महाव्रत और अब्रह्मचर्य महाव्रत, तो गड़बड़ होती है देखना। वो तो ब्रह्मचर्य है, वो नहीं तो उल्टा खटपट कर लेंगे अपन तो मुनि का सारा।
और परिग्रह का परिमाण है
वो तो
पांचवे वाले को क्योंकि लिमिटेड उसने रखा है, इसको तो कुछ नहीं है। अपरिग्रह पूरा परिग्रह नहीं है।
अभी मैंने समझा कि यहाँ रश्मि भाई नहीं बताएंगे तो आप बताएंगे, तो आप तो भमटो हो गया मालूम है ना। कोई बात नहीं, आप लोगों को जानने की गरज नहीं है, हम अपने अपने में समझ गए। हाँ तो ये जब 13 प्रकार के चारित्र, देखो भाई मैं ये किस लिए बोल रहा हूँ कि हमारी बेटी है ना मोना, वो औरंगाबाद रहती है, वो वहां पर पाठशाला लेती है, तो एक क्या होता है, दो क्या होता है, ऐसा करके 11 क्या होते हैं तो 11 प्रतिमाएं याद करवाती है, 12 क्या होते हैं तो 12 भावनाएं याद करते, 13 क्या होते हैं तो चार चार छह छह साल आठ आठ साल के बच्चे 13 चारित्र के नाम बोलते हैं, भले वो नहीं जाने क्या है। ये 13 चारित्र, 14 गुणस्थान, 14 मार्गनस्थान, 15 प्रमाद के भेद, बोलो। अभी हम गए थे तो 16 षोडश कारण भावना चल रही थी उनकी, वो भी सिखाते और बच्चे भी सीखते जोर जोर से। तो हमें ये 13 प्रकार का जो चारित्र कहा जाता है मुनियों के, तो ये इन पांच, मतलब पांच महाव्रत, पांच समिति और 3 गुप्ती। अभी पूछूं क्या पांच समिति कौन सी है? हाँ बोलो बोलो। वाह रे वाह वाह बहुत अच्छा है। हाँ बहुत बढ़िया। इस तरह से हमने ये देखा। अभी आप आगे पढ़ेंगे,
देखो अभी श्लोकार्थ ऊपर का प्रवचन पढ़ते हैं। सुकृत दुरिते सर्वस्मिन् कर्मणि किल निषिद्धे, शुभ आचरण रूप कर्म अने अशुभ आचरण रूप कर्म एवं समस्त कर्मनो निषेध करवामां आवता नैष्कर्मे प्रवृत्ते, ए रीते निष्कर्म अवस्था प्रवर्तता, मुनया कलु अशरणाः न संति, मुनियों कहीं अशरण न थी। ऊपर हेडिंग में तो पूछा था क्या मुनि अशरण होंगे या मुनियों को क्या शरण होगा, तभी यहाँ कलश में बता रहे मुनि कहीं अशरण न थी। जो शू कहे छे मुनिवरो शुभाशुभ रूप समस्त कर्मनो निषेध करीने, शुभ भाव और अशुभ भाव रूप समस्त कर्मों का निषेध करके निष्कर्म अवस्था में प्रवृत्त थाए छे, एटले शू एटले के तेओ रागना कर्म नाम कार्य विनाना, राग रूपी जो कार्य है उसके बिना,
यानी यहाँ देखो कर्म का अर्थ कार्य किया है, हो क्रिया जिसको हम कहेंगे,
राग रूप क्रिया, यानी राग को ही यहाँ कर्म कहा, राग को ही क्रिया कहा, राग को ही कार्य कहा। ये भाव फिर आगे आने वाली है
ना,
कि दया दान भक्ति वगैरह के शुभ भाव और हिंसा झूठ आदि के अशुभ भाव, इसी को यहाँ कर्म कहा है। देखो क्या कहते हैं, राग कर्म नाम कार्य, रागना कर्म ने रागनो कार्य विनाना ज्ञान चेतना रूप कर्म मा प्रवृत्त थाय छे। ज्ञान चेतना रूप कर्म, ज्ञान चेतना रूप कार्य।
देखो यहाँ पर ये जो बताया ना कि अभी हम देख रहे हैं, ये ऊपर जो पहली लाइन है ना श्लोकार्थ के, शुभ आचरण रूप कर्म यानी शुभ आचरण रूप क्रिया, क्योंकि मुनियों के ये जो 28 मूल गुण पालन करने के जो परिणाम है उसको यहाँ कर्म कहे। और उनके तो वैसे देखा जाए तो अशुभ तो होते ही नहीं है, फिर भी उसको यहाँ एंटर तो किया है उसको, कि अशुभ का आचरण रूप क्रिया, इन दोनों का उन्होंने निषेध किया है। और क्या किया है कि शुद्ध रूप जो क्रिया चल रही है, कर्म चल रहे हैं, निष्कर्म अवस्था कहा है। निष्कर्म अवस्था यानी ये दो रूप क्रिया नहीं होती है तो कौन सी होगी, ये शुद्ध क्रिया जो है, तो वो तो उनके लिए शरणभूत है, ऐसा बताना चाहते हैं। हाँ आगे,
तो ज्ञान चेतना रूप कर्म में प्रवृत्त था जी, उसको भी कर्म कहा, कार्य है ना वो, क्रिया है। शुभाशुभ कर्म रहित निष्कर्म अवस्था ने प्राप्त थई ने मुनिवरो शुद्धोपयोग रूप चैतन्य नी निर्मल अवस्था में प्रवृत्त थाय छे, तेथी तेओ काई अशरण नथी, वो कुछ कार्य बिना के नहीं है। उस समय शुद्धोपयोग रूप कार्य चल रहा है, ज्ञान चेतना रूप कर्म वहाँ चल रहा है, अर्थात तेमने शुद्ध चैतन्य नु शरण छे। हवे आवी वात समझ भी कठिन पड़े एटले बिचारा जीवो अनंत काल थी शुभाशुभ माज मंडी रहेला छे, लागी रहेला छे। कुछ पुण्य करो, कुछ उपवास करो, यात्रा करो तो चलो हो गया, तो उसमें समाधान मानकर चलता रहता, अनंत काल ऐसे ही बीता आता है ना। अनंत बार मुनि हो गया, ग्रेवे जाने वाले कौन हो गए, द्रव्यलिंगी मुनि, तो अनंत बार ऐसे ऐसे शुभ क्रिया में ही अटक गया, शुभ राग में ही अटक गया, और फिर आत्मा का भान नहीं किया तो उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा।
देखो यहाँ पर बात ये बता रहे हैं, हम जो किसी को पैसा दान देते हैं या कोई अन्य किसी कुछ भी जो काम करते हैं तो हम समझते हैं कि हमने कितना बड़ा पुण्य किया, लेकिन यहाँ तो उत्कृष्ट पुण्य तो उसी को कहा है जो 28 मूल गुण पालन करने के परिणाम रखता है। वह जीव वास्तव में चाहता तो है कि मुझे मोक्ष मिले, लेकिन वह शुभ में ही धर्म है ऐसा जानकर मानकर उसी में लवलीन होता है, और ऐसी अवस्था में उसका अगर मरण हो जाए तो वो नवे ग्रह तक भी जा सकता है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि भाई ऐसे परिणाम यानी इतने शुभ परिणाम होते हुए भी इस जीव को मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष मिलने का कौन सा तरीका है कह रहे हैं, तो कहते कि अपने स्व स्वभाव में एकाग्र हो जाना, ज्ञान को ज्ञान में लीन करना कहो या आत्मा में लीन करना कहो, वो बात है। तो ये समझा रहे हैं कि ऐसी बात आज तक इस जीव ने समझी नहीं, कब से, अनंत काल से। फिर क्या कहते हैं, बिचाराओ मूर्खाओ, एम नहीं बोल, बिचाराओ अनंत काल थी शुभाशुभ माज मंडी रहेला छे, यानी उसके पीछे लगे। मंडी रहेला का अर्थ क्या है, पीछे लगे, हाँ मतलब उसके पीछे लग गए ऐसा। हाँ वो तो दिया है, लेकिन मंडी पड़े लगा अर्थ बहुत अच्छा है। परंतु भाई शुभाशुभ भाव ये कोई अपूर्व चीज नथी, शुभाशुभ भाव तो निगोदना जीवे पन थया करे छे। देखो नियम तो ऐसा है, अंतर देखो देखो दो बातें हो सकती हैं, या तो शुद्धोपयोग या तो अशुद्धोपयोग, और जिसको कभी शुद्धोपयोग हुआ ही नहीं उसको अशुद्धोपयोग ही होगा। अशुद्ध उपयोग के भी दो भेद, एक शुभ उपयोग और एक अशुभ उपयोग। कोई भी जीव अधिक से अधिक एक अंतर मुहूर्त तक ही शुभ भाव में रहेगा तो वो अगर सम्यक भी नहीं है तो पलटकर अशुभ में चला जाएगा, और अशुभ में से शुभ में, शुभ में से अशुभ में, और जो धर्मी जीव कहो या सम्यक दृष्टि जीव कहो, वह तो हो सकता है कि शुद्ध में से शुभ में, और फिर शुभ में से अशुभ में, फिर अशुभ से शुभ में, फिर शुभ से शुद्ध में, ऐसे अन्य अन्य जगह जाएंगे। देखो, एक अंतर मुहूर्त से अधिक ना अशुभ में रहेगा, एक अंतर मुहूर्त से अधिक ना शुभ में रहेगा, और एक अंतर मुहूर्त से अधिक शुद्ध में रहेगा। क्यों? केवल ज्ञान हो गया ना, तो भी शुद्ध में रहने की कोई गरज नहीं, हो बस बात पूरी थी गई। तब यहां क्या समझाते हैं कि निगोदना जीव ने पन शुभाशुभ भाव तो थयाज करे छे, और उसमें भी जरा उच्च प्रति का शुभ भाव हो जाएगा तो उसमें से उछलकर बाहर निकलेगा। कैसा? सिका हुआ चने जैसा ना, हाँ, कढ़ाई में से बाहर निकले। तो देखो देखो भाई, हम तो नक्की कर सकते हैं ना कि यह जीव निगोद अवस्था में क्यों गया है। शुभ परिणाम से गया होगा ना बेन। निगोद में कोई जीव जाता है, इतर निगोद की बात है, शुभ भाव करे इसलिए जाता होगा कि नहीं? हाँ हाँ, अशुभ भाव, बरोबर, बहुत अच्छा है। तो घबराते क्या हैं आप? हाँ, तो कहते हैं हाँ, वो पाप काम करा होगा या पाप भाव किया होगा, अशुभ भाव किया होगा, तो वहां जाएगा, और वहां से बाहर निकलेगा तो क्यों निकलेगा? कौन सा भाव करेगा? तो शुभ भाव करना तो ये कोई तुम्हारे लिए नई बात नहीं है, निगोद अवस्था में भी तूने ये बात की है, ऐसा कहते हैं। शुभाशुभ भाव तो निगोदना जीव ने पण थया करे छे, कदी पण त्रस न थया होय एवा अनंता निगोदना जीव पड़िया छे। यानी ये कौन सी बात कर रहे अभी? नित्य निगोद की। पण एने क्षणे शुभ अने क्षणे अशुभ भाव थया करे छे। आ डुंगळी, डुंगळी अने क्या? तो आगे कांदा दिए ना, डुंगड़ी लसन कांदा,
मोगरी मोगरी
ये?
मोड़ा मोड़ा,
नहीं नहीं नहीं
मोड़ा,
अरे नहीं रे, डुंगड़ी ने कांदा, ये गुजराती लोग पूछो ना। हाँ वो मैं आपन थोड़ा सा उसमें ये करेंगे डिफरेंसेज। डुंगड़ी यानी वो उसकी ग्रीन ये होती है ना पत्ती, उसके साथ वाला
छोटा कांदा। हाँ,
और कांदा यानी ऐसा खाली ऊपर का कुछ नहीं, खाली ऐसा है, ऐसा आप मान लेते हैं ना, अपना क्या जाता है ये मच्छे आए जो जो। हाँ। ये हमेशा दिव्या बेन हमारे तरफ से कौल देती है कि हाँ तुम बराबर। हाँ, डुंगड़ी लसन कांदा शक्कर कंद वगैरह कंदमूलनी एक राई जेटली कटकी में असंख्य अवतारिक शरीर छे, अनेक दरेक शरीर में शक्तिए भगवान स्वरूप एवा चैतन्य स्वभाव में अनंता निगोदना जीव छे। त्या कोई ने देवगुरु शास्त्र नो योग नथी अने दानादीपन संभवित नथी, छता ते दरेक जीव ने क्षणे अशुभ अने क्षणे शुभ एवी कर्मधारा निरंतर चालू छे। शुभाशुभ भाव एकाई नवी चीज नथी, अरे ए कोई चीज ज नथी के उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। क्यों क्यों साहब? तू कहते आत्मा में क्या छे? आत्मा क्या छे एमा? यानी शुभ भाव में आत्मा कहाँ है? जहां आत्मा है वहां शुभ भाव नहीं है, तो त्रिकाली स्वभाव की बात है। तो जहां आत्मा है वहां शुभ भाव नहीं, जहां शुभ भाव है वहां आत्मा नहीं, इसलिए कहते आत्मा क्या छे एमा। देखो अभी क्या कह रहे हैं, जे यानी हमको ऐसा लगता है ना, हमने इतना शुभ भाव किया, हमने ऐसा किया वैसा किया, तो कि उसमें सु नवाई, उसमें तूने कोई अपूर्व बात तो की नहीं है, ये तो क्या, ये मुझे याद नहीं आ रहा है वो। ये रास्ते पे वो चमार बैठता है ना, वह भी ऐसे धर्म करो के उपदेश देता है। हाँ, तो मुझे अभी ये कोई स्वामी जी बोल रहे थे, वो किस्सा मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मुझे ये कहना है कि ये धर्म करने की यानी वो शुभ भाव करने की बात कर रहा है, तो ये शुभ भाव कोई नई बात नहीं है, कोई भी जीव करेगा। यहां तो निगोद की सबसे मिनिमम मोस्ट ऐसी जिसकी अवस्था है, छोटे में छोटी और जो नहीं पता लगे, ऐसे जीव भी शुभ भाव करते हैं। चलो तो क्या कह रहे देखो, जेम सकंद शक्कर कंदमा ऊपर नीचे लाल छाल होई छे, तेनु लक्ष्य छोड़ी दो तो अंदर आखोए छाल थी जुदो, शक्कर कंद नाम साकरनी मिठास नो पिंड छे। ये शक्कर कंद समझे? हाँ, एम भगवान आत्मा शुभ ने अशुभ भाव रूप छाल नु लक्ष्य छोड़ी दो तो अंदर शुभाशुभ भाव थी जुदो, चैतन्य स्वरूप अति इंद्रिय आनंद ना रसती भरे लो अमृत नो कंद छे। जेम सकरकंद मिठास नो कंद छे तेम भगवान आत्मा चिदानंद कंद छे। हवे शुभाशुभ कर्म थी रहित तथा मुनिवरो अशरण छे एम नथी। ये मूल बात कहां से निकली थी? मुनि अभी अशरण हो जाएंगे क्या? बोलते नथी, पन तेमने चिदानंद कंद स्वरूप भगवान आत्मा नु शरण होई छे एम आई कहे छे। जो आई शुभाचरण रूप कर्म एम लीधु छे एटले के जड़ परमाणु जे बंधाय एनी आ वात नथी। एक नया ऑफशूट ऐसा निकल जाएगा, कोई कहेंगे कि ये तो शुभाशुभ कर्म की बात लेते हैं तो ये तो द्रव्य कर्म की बात होगी, तो ये बात आई नहीं। आई तो सुकृत एटले शुभ आचरण रूप दया दान व्रत भक्ति इत्यादि ना शुभ भाव, अनेक दुरित एटले हिंसा झूठ चोरी कुशील विषय वासना इत्यादि ना अशुभ भाव, यानि सुकृत यानि शुभ भाव, दुरित याने अशुभ भाव। ए बे भावनो निषेध करीने मुनिवरो निष्कर्म अवस्था रूप प्रवर्ते छे। एटले शू? एनो अर्थ एम छे के शुभाशुभ राखती निवृत्ति पामीने शुद्ध भावमा शुद्ध चैतन्य स्वभावमा प्रवृत्ति करे छे। निष्कर्म यानी क्या? ये जो शुभाशुभ कर्म जो था उससे वो रहित हो गए तो निष्कर्म हो गए, तो वो दोनों नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अरे वो तो स्वरूप में लीन होंगे। कहा ना शुद्ध भाव में, नहीं तो शुद्ध चैतन्य स्वभाव में प्रवृत्ति करे। ये निवृत्त निष्कर्म को प्रवृत्ति करना ऐसा बताया हो। देखो कहां से कौन सा अर्थ निकालते है स्वामी जी। अहो आओ वितराग नो मार्ग परम अद्भुत अने अलौकिक छे। आवो मार्ग बीजे क्याय नथी, बीजा बधा मार्ग अमार्ग छे, विपरीत मार्ग छे। वेदांत हो के सांख्य हो, वैशेषिक हो के बुद्ध हो, ए कोई ए सम्यक मार्ग जाण्यो नथी, ए कोई ए सम्यक मार्ग जाण्यो ज नथी। आ तो जेने एक समय में त्रण काल त्रण लोक ने जोया छे एवा वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर नी वाणी द्वारा प्रकट थयेलो सम्यक मोक्ष मार्ग छे। जो अशुभ आचरण नी जेम शुभ आचरण पन बंधनु कारण होवा थी निषेधियु छे, तो पछी मुनिवरु कोनु शरण ले शू प्रवृत्ति करे? तो कहे छे के मुनिवरो ने शुभ राग रहित निष्कर्म अवस्था थता ते वो अंदर अतीन्द्रिय आनंद रसती भरेला अमृत स्वरूप भगवान आत्मा में एकाग्रता रूप रमवा रूप प्रवृत्ति करे छे। निष्कर्म अवस्था प्रवर्तता एम भाषा छे ने, एम भाषा छे ने, ऐसा प्रयोग किया है ना उधर। निष्कर्म नाम शुभाशुभ कर्मती निवृत्त अवस्था, एवी अवस्था में एटले के शुद्ध चैतन्यमय अरागी परिणति में प्रवृत्त थाय छे। आहा हा, ये अर्थ समझ में आया ना? हाँ वीरेश भाई, कोई डिफिकल्ट नहीं ना? बहुत आसान है, इसलिए कभी कभी मुझको ऐसा लगता है कि सिर्फ पढ़ते जाऊं, क्योंकि लिंक टूटती है बीच में, और कभी कभी लगता है कि थोड़ी आपकी नींद भी उड़ा दूं। हाँ, क्योंकि अभी आखा दिन काम करके थक जाते हैं ना आप लोग, फिर भी यहाँ आते हो, बहुत अच्छी बात है।
देखो यहाँ शुद्ध चैतन्य में प्रवृत्ति करना ही शुभाशुभ से निवृत्ति होना है।
बहुत अच्छा, दोनों एक
ऐसा नहीं कि पहले छोड़ दी फिर थोड़ा निवृत्त हो गया चलो फिर हम सोचते ना चलो अभी बहुत काम है थोड़े निवृत्त हो जाएंगे सबको निपटा कर फिर बाद में जाके स्वाध्याय करेंगे, ऐसा नहीं है। तो अपने चैतन्य में प्रवृत्ति करना ही शुभाशुभ से निवृत्त होना है, ये बात यहाँ बताने।
देखो देखो बात तो ये ऐसा बताना चाहते हैं कि ये शुभाशुभ भावन से निवृत्ति लेने का अर्थ ही आत्मा में प्रवृत्ति करना है, और ये दोनों एक साथ बातें होती हैं। तो ये तो उपदेश में तो ऐसा है पहला राग छोड़ो, पहला राग छोड़ो। अब राग कैसा छोड़ो, ये स्वरूप में गुप्त हो जाएगा तो राग छूट ही जाता है, क्योंकि जो पूर्व पर्याय का व्यय और नए पर्याय का उत्पाद दोनों एक साथ होते हैं ना। वो बात ख्याल में आनी चाहिए। देखो देखो मुनिवरों पोते शुद्ध चैतन्य घन भगवान अंदर अतीन्द्र आनंद रस वीतराग रस शांत रसती भरो पड़ियो छे तेमा प्रवृत्त थाय छे। लियो आ मुनिवरों अंतरंग प्रवर्तन अने आज मार्ग छे। पंच महाव्रत अने नग्नपनु ए काय मुनिपनु नथी, ए तो जड़रूप बाह्य लिंग छे। समझाणो काय। अभी मुझे याद आया बहुत दिन के बाद मैं कहाँ बाहर गांव चला गया था, उस समय बताया था कि 28 मूलगुण याद करके आना करके, भूल गए ना तुम लोग। हाँ कोई बात नहीं, सोमवार को आऊंगा जब मैं पूछूंगा सबको, क्योंकि अभी भी 2-3 दिन छुट्टी है ना। सोमवार तक है ना तुम। हाँ 28 मूलगुण याद करना बेटा। ये पंच महाव्रत लिखा ना जब ही मुझे याद आ गया, अरे नग्न बनू हमने याद भी किए थे, पांच महाव्रत पांच समिति, हाँ तीन गुप्ति नहीं आते हैं, पांच इंद्रिय विजय, षट आवश्यक और 7 शेष गुण, ये तो ऊपर ऊपर हमने याद किया, यानी ओनली हेडिंग्स, अभी फिल इन द डिटेल्स। तीन गुप्ति उसमें नहीं आती। हाँ क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा अभी होमवर्क देना चाहिए। आ तो सोनगढ़ नू छे एम केटला कहे छे। देखो स्वामी जी के प्रवचनों में भी बहुत बार रिफ्लेक्शन आता है कि लोग कुछ न कुछ उनके बारे में ऐसे कि जिसको हम कहेंगे खोटा आरोप करते थे, अफवाहें उठाते थे, तो ये जो कहना था ये स्वामी जी ने बताया कि शुभ भाव यह धर्म का कारण नहीं है। धर्म तो है ही नहीं तो धर्म का कारण भी नहीं है, तो लोगों को बहुत नाराजी होती थी। इसलिए यहाँ क्या कहते हैं, आ तो सोनगढ़ नु छे एम केटला कहे छे, तो आगर शू बताए जुओ आ शास्त्र एटले समयसार। सोनगढ़ तू बनावेलू नथी पण महासमर्थ मुनिवर नु बनायेलू छे। 2000 वर्ष पूर्वे भगवान कुंदकुंदाचार्य महान दिगंबराचार्य थई गया एमनु बनावेलू आ शास्त्र छे। ત્યાર બાદ 1000 વર્ષ પછી તેની ટીકા આચાર્ય અમૃતચંદ્ર દેવે કરી છે। એ મુનિવરો એમ કહે છે કે શુભાશુભ ભાવથી નિવૃત્તિ થતા શુદ્ધ શુભાશુભ ભાવથી સોરી શુભ ભાવથી નિવૃત્તિ થતા શુદ્ધ ભાવની પ્રવૃત્તિનું મુનિને શરણ હોય છે, અને એ જ વાસ્તવિક શરણ છે। શુભ ભાવ કાંઈ શરણ નથી, લ્યો આ મુનિનું કર્મ એટલે જ કાર્ય છે। ક્યા હે કે જબ ઉન્હોને યે સારી બાતે નિકાલી તો થોડા સા મુનિ વર્ગો મે ભી થોડા સા એસા હલચલ મચ ગઈ। મુઝે યાદ હે કે શોલાપુર મે શિબિર લગા થા, तब वहाँ पंडित बाबू भाई मेहता गए थे, ये मैंने सुनी हुई बात है, मतलब प्रत्यक्ष नहीं दूसरों से। तब उन्होंने ऐसा कहा था मुनि जो है वो तो जंगल में रहते हैं, ऐसा है वैसा है, जो कुछ इसमें जो वर्णन आता है वो उन्होंने किया। तो वहाँ की सारी समाज खलबला उठी, क्योंकि वहाँ तो गांव में रहने वाले मुनिराज रहते थे उस समय में, ये तो बहुत 25-30 साल पहले की बात है, ख्याल में है ना, जास्ती 35 साल हो गए होंगे, 75 के आसपास, 30 साल उसके पहले, मैं इस क्षेत्र में नहीं था उस समय। तो फिर उन्होंने अगले टाइम में महाराष्ट्र में जाने के बाद वो बात कभी छेड़ी नहीं। ये मैंने हुकमचंद जी बारिल से सुनाया। क्या करे, लोगों को देख के कभी कुछ बोलना पड़ता है, ऐसा बोलते थे। यानी है बात सत्य, पर वो बोलने जाओ तो कड़वास लगती है लोगों को, तो इसलिए यहां बता रहे हैं कि आ बात अत्यारे नहीं, 2000 वर्ष पूर्वनी छे, आजनी नहीं, एम कहे छे। अरे आवो वितराग नो मार्ग छोड़ी ने, जेनु चित्त पांच इंद्रियोना विषयोमा भगवान ने भगवान नी वाणी मा अने एना राग मा रमे ते, क्या लिखा है? हाँ भाई, अरे घबराते क्यों हो, जोर से बोलो। हाँ, चोर छे, किसको चोर बोला? कि जो राग में ही राग करता है। देखो देखो देखो, ये पहले तो अशुभ में जो रचा पचा है ना, और उसके आगे क्या बताएं, जो शुभ भावों में भी अटका हुआ है, कौन? भगवान अने भगवान नी वाणी मा, अने इसका अर्थ क्या, इमना राग मा रमे छे, एटले त्याज अटकी बैठो छे। अभी हमारे बचपन में भी हमको हमारे घर के लोग बोलते थे, देखो शाम को 7 बजे के बाद घर के बाहर नहीं रहना, तो रमवा नहीं बेसवान उताज, क्योंकि वो छोटे थे तो क्या गोटी खेले, पतंग उड़ाए, कुछ ऐसी खिटपिट की चलती थी, तो त्याज रम तो नहीं बेस, तो आज रमे छे क्या रागमा। 31वीं गाथा मा
देखो पढ़ते आगे, 31वीं गाथा मा साक्षात अनंत भगवान अने भगवान नी वाणी ने इंद्रियना विषय मा गण्या छे। उसको क्या कहा वहां पर पता है? इंद्रिय का विषय कहा, इतना ही कहा और क्या कहा? हाँ लक्ष्मी जी, सबको मिलकर इंद्रिय कहा। इंद्रिय के विषय को भी वहां इंद्रिय कहा है, याद है ना? तो इंद्रिय ना विषय मा गण्या छे, त्यां कहीं छे के जे कोई आत्मा आ पांच जड़ इंद्रियो अने एक एक खंड खंड रूप अंदर एक एक खंड खंड रूप भावे इंद्रिय अने इंद्रिय ना विषय, उसमें किस किस को लिया? स्त्री कुटुंब देश देव गुरु शास्त्र ने एमनी वाणी ए सर्वने जीती ने, इने जड़ इंद्रिय भावे इंद्रिय और उसके विषय, इस सबको जीतना, इने क्या जीतने एटले ए सर्वनु लक्ष्य छोड़ी दईने, भगवान का भी लक्ष्य छोड़ना पड़ेगा हो, शास्त्र का भी, शास्त्र में से तो आत्मा का स्वरूप समझेंगे, स्वरूप तो समझा है परंतु आत्मा में स्थिर होने के लिए शास्त्र का भी लक्ष्य छोड़ना पड़ेगा, वाणी का भी लक्ष्य छोड़कर वाणी ने जिसको बताया है उसको लक्ष्य करना है। तो कहते हैं सर्वनु लक्ष्य छोड़ी दई ने पोताना शुद्ध चैतन्य में आत्मा ने अनुभवे छे ते जितेन्द्रिय जिन छे। जो आ चैतन्यनी प्रवृत्ति रूप निष्कर्म प्रवर्तन मुनि ने शरण छे, और हमें शरण कौन है? पैसा क्यों बिन? ये हरेक के लिए शरणभूत यही एकमात्र है। अभी यहाँ मुनि की मुख्यता से बात की है, परंतु जिसे मोक्ष मार्ग प्रकट करना है उसके लिए तो शरणभूत तो अपने निज शुद्धात्मा ही है। हाँ हाँ कहे छे, निष्कर्म अवस्था प्रवर्तता मुनिया खलु अशरणा न संति, मुनियों कहीं अशरण नथी, एटले अर्थात तेमने शुद्ध चैतन्य घन स्वरूप निज आत्मानु शरण छे। रागनु शरण छूट्यू અને ભગવાન આત્માનું શરણ તેમને પ્રાપ્ત થયું છે. મંદિરમાં પૂજા વખતે ચત્તારી શરણમ બોલે છે ને, હમ કિસ કિસ કો શરણ ભૂત કહેતે હૈ, તો અરહંતા શરણમ, સિદ્ધા શરણમ, ઓર કોને, સાહુ શરણમ, ઓર કેવલી, હા કેવલી પન્નત્તમ ધમ્મમ શરણમ, આમ બોલે છે ને ભાઈ. એ તો બધી વ્યવહારની વાતો છે, અહીં તો
વ્યવહારની વાત, ઇસકા અર્થ એ શુભ ભાવ હૈ, વ્યવહારની વાતો છે,
યાની વો તો પર હૈ ના અપને લિયે, પર કા શરણ યે તો વ્યવહાર સે કહેંગે, અરિહંત કા શરણ લિયા યે વ્યવહાર સે કહેંગે, સિદ્ધોં કા શરણ લિયા વ્યવહાર સે કરેંગે, ફિર સાધુ કા શરણ લિયા વ્યવહાર સે કરેંગે, કેવલી પ્રણીત જો ધર્મ હૈ ઉસકા શરણ લિયા યે ભી વ્યવહાર સે કહેંગે, પરંતુ ઉસમે બતાયા ક્યા કે અપની આત્મા કી શરણ લો, સબને તો યહી બતાયા ના, તો અપની આત્મા કી શરણ લેના હી નિશ્ચય શરણ હૈ, ફિર વ્યવહાર સે કહેંગે ઇની ઇનકી હમને શરણ લી હૈ. તો કહેતે આ બધી વાતો વ્યવહારની છે, અહીં તો નિશ્ચય શરણ શું છે એની વાત છે. અરહંતાદીનું શરણ લેવા જતા તો વિકલ્પ ઉઠે છે, અને વિકલ્પ શુભરાગ છે. એ શુભરાગ બંધનું કારણ હોવાથી સર્વજ્ઞ દેવોએ નિષેધ્યો છે. हमने अरिहंत को शरण कहा, अरिहंत भगवान ने ही उसका निषेध किया है, तो उन्होंने जो मार्ग बताया है, जिसका निषेध किया है, उसी में हम लगे रहेंगे क्यों? अरहंतों ने ही वो अरिहंत के भक्ति का निषेध किया कि इससे तेरा कुछ कल्याण नहीं होने वाला है, तू अपनी आत्मा की शरण ले तो तेरा कल्याण होगा. फिर भी अशुभ से बचने के लिए ऐसा शुभ भाव आता है, परंतु वो शरण रूप नहीं है, ये पहले अंदर नक्की करना है, वही रुकने के लिए नहीं करना है. वहां अनंता जिन भगवंतोए दिव्य ध्वनि द्वारा कहेली बात आ छे, एक दो ने नहीं, अनंतों ने यही बात बताई, क्योंकि मार्ग तो एक ही होगा. भगवान महावीर आदि तीर्थंकरो तो मोक्ष मा पधार्या छे अने सिद्ध पदे विराजे छे, पण महाविधेय क्षेत्र मा सीमंदर आदि तीर्थंकरो અત્યારે સાક્ષાત વિરાજે છે. 500 ધનુષનો દેહ તથા કરોડ પૂર્વનું આયુષ્ય છે. અભી વિદેહ ક્ષેત્ર મેં તો હમેશા હી વહાં કે 500 ધનુષ ઊંચાઈ હોતી હૈ, ઓર કરોડ પૂર્વને વહાં કા મેક્સિમમ આયુ કરોડ પૂર્વ કી હૈ. અરહંત પદે વિરાજે છે, તેમની સમોસરણ સભામાં મુનિવરો, સ્વર્ગના ઇન્દ્રો, ચક્રવર્તી, રાજા મહારાજાઓ, શ્રાવક શ્રાવિકાઓ, સિંહ, વાઘ અને સર્પ ઇત્યાદિ જીવો વાણી સાંભળવા આવે છે. એ જો 12 સભા બતાઈ જતી હૈ તો ઉસમે એક એક કોઠે મેં વો અલગ અલગ દેવીઓ કા, દેવો કા, મનુષ્યો કા, સ્ત્રીઓ કા વગેરે અલગ અલગ હોતે ને, મહારા મુનિઓ કે, આર્યકાઓ કે, તિર્યંચો કે, કોઠે અલગ અલગ હોતે હૈ, તે વાણીમાં ભગવાન જે કહે છે તે આ છે. મહાન દિગંબર સંત ભગવાન શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય ત્યાં સિમંદરનાથ પાસે ગયા હતા, 8 દિવસ ત્યાં રહ્યા હતા. એ તો સબકો વિદિત હી હૈ, પતા હૈ. 8 દિવસ ભગવાનની વાણી 6 ઘડી સવારે, 6 ઘડી બપોરે, 6 ઘડી સાંજે છૂટે છે તે સાંભળી આગળ પાછળના વખતમાં ત્યાંના શુતકેવળીઓ સાથે ચર્ચા વાર્તા કરી અહીં ભરતમાં પાછા આવીને આ શાસ્ત્રો બનાવ્યા છે, એમાં આ ભગવાનનો સંદેશ છે એમ કહે છે.
એ સંદેશ કાલે આપશો.
જાવાણી કે જ્ઞાન તે સૂજે લો કાલો, સોવાણી મસ્તક નવો સદા દેત હો.